needed drive-through facility, one-stop shop. Up T Street location, exit 579 from Highway 401. In Napanee, quick truck loop, 519-622-0660. Quicktrucklube.com.
Yummy! Kya chicken biryani hai? It's yum! This veg biryani. Shan biryani masala. चाहे चिकन बिरयानी में डालो या वेज बिरयानी में, दोनों एकदम लजीज बनती हैं। शान खुशियां चख लो।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
नान कबाब, मॉडर्न अफगानी किचन, लजीज अफगानी ग्रिल कबाब, चपली कबाब, चौपान कबाब, लैम शैंक, चिकन कोरमा प्लेट, फैमिली प्लेटर, कबाब रैप, फ्राइज, मंटू, बोलानी, फिरनी और सब के लिए बहुत से मजेदार खाने। बिजनेस लंच स्पेशल मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 2 PM, बाय वन गेट वन 50% ऑफ। मिसेस सागा लोकेशन ओनली, 90 एनिगम बुलेवार्ड इन मिसेस सागा। फॉर ऑर्डर्स एंड रिजर्वेशंस कॉल 905-670-9070 905-670-9070 और विजिट nankebab.ca।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान। सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यूकमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, असेस इन रियल एस्टेट, ही विल मेक मॉर्गेज इजी फॉर यू। कोकब जावेद मॉर्गेज एजेंट, 416-454-6065।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
Little Tree House Islamic Child Care Center, जो मौजूद है 700 Double Drive, Suite 111, Oakville में, जहां 18 महीनों से लेकर 4 साल के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। हम इस्लामिक माहौल में बच्चों को सीखने और पढ़ने का मौका फराहम करते हैं और कम उम्र से ही अरबी मुतारफ करवाते हैं। बच्चों को सुनना सिखाते हैं, जैसा कि बैठकर पानी पीना, बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सलाम करना, आसान दुआएं, अरबी अल्फाबेट्स, अल्लाह और रसूल के नाम शामिल हैं। हमारे इदारे से आपके बच्चों को जरूर फायदा होगा। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 416-828-5649 या विजिट करें littletreehouse.ca।
फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या फिर होवे लोन,
सोचो ना बस, बिल्कुल भी होने मिलाओ फोन।
416-502-8000, स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काख दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक, 416-502-8000,
लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर, न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 905-848-7000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को कढ़ाई करीज बारबेक्यू बारबेक्यू प्लेटर रोल्स एंड मच मच मोर और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 9052323663 6477744888 विलेज टेस्ट।
बहनों और भाइयों इस ऐलान को जरा सुनिए ध्यान से।
यानी और पैसे जाने वाले हैं?
नहीं मेरे प्यारे, पैसे तो आने वाले हैं।
और पैसे मगर कैसे?
एक इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है नया प्लान, आपने पे करना है 20 साल एज 65 पे। कंपनी गारंटीड 50% ऑफ द प्लान वैल्यू आपको दे देगी वापस। आपकी रिटायरमेंट सेट खुदा न खास्ता डेथ की सूरत में 100% ऑफ द प्लान वैल्यू क्लेम की सूरत में फैमिली के पास।
अरे ये तो बहुत ही आसान है।
बिल्कुल, फोन करें और पता करें कि आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। और याद रहे ये है एक बड़ी लिमिटेड टाइम ऑफर। कॉल मी 905-607-5000। मैं हूँ कौन?
फजल वदूद
फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। 905-607-5000।
जी सामे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश शुक्र और सेहतमंद होंगे। भाई हमारा आज भी आपके साथ रहेगा 4:45 तक। इस वक्त 3:05 और 51 सेकेंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। ट्यूसडे का दिन है, नवंबर की 15 तारीख, और इस वक्त -1 degree टेम्परेचर है। कहा था ना पहले कितने दिनों से कहता आ रहा था, देखो बड़ा प्यारा मौसम है, व्हाट अ गॉर्जियस वेदर। आज गॉर्जियस वेदर नहीं है फॉर कैनेडियन। यस इट इज अ गॉर्जियस वेदर। हम जो यहाँ रह रहे हैं हमारे लिए गॉर्जियस वेदर है। ब्यूटिफुल स्नोफॉल आउटसाइड। कहते हैं कि आज 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक बर्फ के चांसेस हैं। एंड स्टार्टेड White क्रिसमस अभी से। आज शाम को +2 degree टेम्परेचर होगा, आज रात को +1, एंड कल सुबह इंशाल्लाह ताला हमारी और आपकी आंख खुलेगी तो यही मौसम रहेगा। एंड 2 degree टेम्परेचर होगा, और उसके बाद 2 degree टेम्परेचर के बाद भाई अगर मेरा कंप्यूटर काम कर जाए तो मैं आपको बताऊंगा। यस फ्राइडे को कल दोपहर को 18 degree टेम्परेचर हो जाएगा। वाओ 18। फ्राइडे को 15 degree टेम्परेचर, सैटरडे को 8 degree टेम्परेचर, संडे को 4 और मंडे को 3। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 18। एनीवे इससे पहले कि हम आपका प्रोग्राम शुरू करें आपके लिए थोड़ी सी क्रिकेट। कल इतना हमारा टाइट प्रोग्राम था कि हमने कल क्रिकेट के मुताबिक बात नहीं की, तो आज हमने सोचा थोड़ी सी वेरी शॉर्ट बातचीत जो है क्रिकेट की होगी। और हमारी एक्सपर्ट जो है ना, जो हमेशा गलत प्रेडिक्शन करती हैं, शाजिया मलिक जी मेरे साथ हैं, और जो हमारे एक्चुअल एक्सपर्ट हैं वो हम सारे एक्सपर्ट हैं जी, परवाह क्यों कर रहे हैं, हम सारे एक्सपर्ट हैं। जीशान हमारे साथ हैं। जीशान शाजिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम मेरी ज्योति पीरी डीक्षित। सही निकली, मैंने आपको पहले ही कहा था 16 ओवर्स में जो टीम 174 बना सकती है उससे बचो, जितना हो सके बचो।
वो तो कन्ने कन्ने से जीते, वो हमारा अफरीदी जो है उसके घुटना खराब हो गया, वरना परफेक्ट था। 4 ओवर्स रह गए थे, 2 ओवर्स जो हैं अफरीदी के, 2 ओवर्स जो
है। आप माजिद भाई मुझे $50 देंगे, आप हार चुके हैं।
मैं आपसे कह रहा
हूं यू हैव लॉस्ट
इंडिया इंडिया इंडिया
बेईमानी जो है ना माजिद भाई की, पिछली दफा भी ये मेरे से शर्त हारे थे इन्होंने मुझे 50, अब 100 हो गए हैं। पिछली दफा के 50, इस दफा के 50।
साफ बेईमानी हुई,
हाँ देखे
बेईमानी हुई, उसके घुटने को चोट लगा दी इन्होंने। देखो आप ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना, सामने आके खेलो ना।
नहीं,
उनको जड़ी बूटियां दी थी वो काम नहीं आई, जड़ी बूटियां दी थी उनका काम,
जड़ी बूटियां काम नहीं आई। देखिए नहीं, वहां जो उनको दवाई दी वो मिक्स थी, वो बेचारे का घुटना तोड़ दिया,
दो नंबर कैनेडियन दवाई। इनको आउट करो भाई, इनको गुगली कराओ, ये आउट है, ये मुझे $100 नहीं दे रहे, $100 दे।
ये तो भाई साफ साफ बीमारी, देखो
बीमारी।
वो टीम जो अकॉर्डिंग टू शाजिया जी, वो टीम जो 176 रन बनाती है, वो 130 रन पे वो पक हो गए थे. चार ओवर रह गए थे, मींस के 24 बॉल्स है ना, 6 times 4 is 24 बॉल्स रह गई थी एंड इंग्लैंड हैड टू मेक ओवर 40 रन है ना. इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. चार हमारे बॉलर है
और इम्पॉसिबल ना ही छक्के थे चौके मारे हैं.
वो तो हमारे ओल्ड मैन को मार दिए उन्होंने.
हमारा रिकॉर्ड है कि हमने
फिर चार
ओवर्स में खेलना होता है.
वो देखे ना, वो बेचारा हार्ट अटैक है, वो बूढ़ा आदमी है, उसको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए.
पर आप तो बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड.
गोल्ड है.
अच्छा, ये गोल्ड है जिसने पाकिस्तान को गेम हराई.
वो अच्छा, वो बैटिंग करने आया तो 8 डॉट बॉल देने के बाद आउट हो गया जीरो पे.
अच्छा,
हमारे इफ्तिखार भाई.
हाँ जी, हाँ जी.
और अब बॉलिंग कराने आए तो पहली बॉल पे छक्का.
मेरा बेटा उसको अंकल कहता है.
अंकल अंकल इफ्तिखार जो है वो पहली बॉल पे छक्का, फिर चौका, फिर चौका, फिर एक रन. ओ माय गॉड, गेम तो
खत्म. माय बात देखें, जो सेमीफाइनल हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, 10 विकेटों से इंग्लैंड ने जीता था.
जी है,
ठीक है ना. हमने सिर्फ 6 बॉलें लिए 1 विकेट लेने के लिए.
अब ये बताइए, मैं तो वही कहता हूँ, कितने आदमी थे?
बिल्कुल एक.
हाँ तो 2 ही थे इंडिया के खिलाफ.
सही.
हमारे पास कितने आदमी?
नहीं, इधर भी 2 ही थे, इधर भी 2 ही थे, जिसने छक्के और चौके मारे और जिसने बॉलिंग कराई.
5 तो वो कह रहे थे.
उधर भी 2 ही थे, इंग्लैंड की तरफ भी 2 ही थे.
वो कह रहे थे जी, वो जो है ना, वो आपके हेल्स टॉप के प्लेयर. हमने तो
बटलर
आउट कर दिया.
बटलर कर दिया. हमने कहा जॉब बटलरी करो. ये
भाई भाई, जो 92 और 2000 का हम लोग कर रहे थे कंपैरिजन, उसमें से 3 चीजें जो है सही निकली.
सही.
दो का ध्यान जो है लोगों पे चला गया और तीसरे का ध्यान जो है मैं भी बताता हूँ. अच्छा, मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जो बाद में खेलेगा वो जीतेगा, यही हुआ. और 92 में पाकिस्तान ने बाद में जो है बॉलिंग की थी और पाकिस्तान जीत गया था. अच्छा, 92 में जब पहली बॉल की थी डेरेक प्रिंगल्स ने आमिर सुहेल को, वो बॉल थी 9 बॉल. और इसमें जो फाइनल हुआ है, बेन स्टॉक ने जो पहली बॉल की है मोहम्मद रिजवान को, वो भी 3 नो बॉल. तो ये एक कोइंसिडेंट हुआ है 92 की तरह, लेकिन किसी का इसका ध्यान नहीं गया.
बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो. उसमें जो पहला मैच पाकिस्तान हार गया था 92,
वो तो हमने उसके बात कर ली थी. जी जी. तो हो गया, वर्ल्ड कप खत्म हो गया. इंग्लैंड की टीम पहली दूसरी टीम बन गई जिसके पास 2 T20 वर्ल्ड कप आ चुके हैं. उससे पहले जो वेस्ट इंडीज के पास थे 2012 और 2016 का, उन्होंने लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीते थे. अब इंग्लैंड के पास जो है ये आ गई. अच्छा, इंग्लैंड 2019 का जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भी वो चैंपियन है और T20 वर्ल्ड कप में भी चैंपियन है. तो इस वक्त वाइट बॉल में जो बादशाह है वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के. तो इंग्लैंड वाकई बड़ी टीम है, ये जबरदस्त खेली है इंग्लैंड.
अच्छा, तो बताओ क्या अब ये जो है फ्यूचर क्या है, ये हमारे जो अजीमुशान बाबर जो है उनका क्या है? बेचारा इतना प्यारा है, मुझे इतना तरस उस पे आ रहा है. सारे कह रहे हटाओ इसको, ये नहीं कैप्टन टी यार, क्या मजाक है ये. एक गेम अच्छी नहीं खेली तो कह रहे हैं.
नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एशिया कप अच्छा नहीं खेला, उन्होंने T20 अच्छा नहीं खेला, कहीं पर स्कोर करके नहीं दिया उन्होंने. एंड जो चेंजेस की उसने वो भी चेंजेस नॉट वेरी गुड. सो यस,
मुझे नहीं समझ आ रही कि बॉलिंग के लिए अगर शाहीन शाहफरीदी चला गया था तो अंकल को लाने की क्या जरूरत थी इसको. शादाब को क्यों नहीं लाया भाई? शादाब को तो खेल नहीं सकते ज्यादा ये अच्छे तरीके से.
कैप्टन कैप्टन तो इसीलिए कैप्टन को. क्विकली और कुछ न्यूज आपके पास?
अच्छा, अभी जो जिस एक खास खिलाड़ी की मैं बात करने लगा हूँ, सैम कोरेन जो है पहले खिलाड़ी बन गए फाइनल में T20 यानी कि वर्ल्ड कप फाइनल में प्ले ऑफ द मैच भी रहे और प्ले ऑफ द टूर्नामेंट रहे.
एंड द यंगेस्ट
सिर्फ 24 साल की उम्र में. अच्छा, एक तस्वीर हम दिखाते हैं छोटे जो ये देखें, जो आगे जो बैठे हैं वो सैम कोरेन है, उनके पीछे जो है शॉन मार्श है. और ये पता है इस वक्त कहाँ मौजूद है? अपने घर जिम्बाब्वे में. मिचेल मार्श खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और ये खेलते हैं इंग्लैंड के लिए. 2021 में जो है मिचेल मार्श मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, यानी कि जो फाइनल हुआ था 2021 में. और 2022 में जो है सैम कोरेन प्लेयर ऑफ द मैच रहे.
wow,
तो किसने सोचा होगा माजी भाई के
दोनों
17 साल के बाद 17 साल के बाद जो है वो अपने टीम का नाम कमाएंगे,
दोनों
एक छोटी सी
अच्छा पैट करम का भी पता चला है कि ये आईपीएल नहीं खेल रहे है ना, आईपीएल के लिए नहीं जा रही है
जी जी, वो उनकी नेशनल ड्यूटी है उस पर जो वो बिजी है, पैट कमिंस हो गए और मिचेल स्टार्क है, दो तीन खिलाड़ी उसमें शामिल
है। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान, लाइक आई सेड 3:30 बजे हमारे साथ शमशाद साहब होंगे
जी जी,
और बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे दो स्पॉन्सर्स के पैगाम लेने, मुझे उनसे बातें भी करवानी है आपकी जी फुमाई
जी। सिर्फ आखिरी है जो फाइनल हुआ उसमें शादाब खान ने जो है शाहिद खान आफरीदी का सबसे विकेट टेकर जो T20 में लेने का एजाज है वो हासिल कर लिया है, तो उन्होंने शाहिद खान आफरीदी को पीछे छोड़ दिया और 98 के साथ जो है अब पाकिस्तान के सबसे लीडिंग विकेट टेकर हैं T20 इंटरनेशनल में।
कौन है?
शादाब खान।
शादाब खान
जी जी,
जिसको बॉलिंग नहीं दी गई अकॉर्डिंग टू शाजिया उसको बॉलिंग नहीं दी गई तो पाकिस्तान हार गया।
बहुत बहुत शुक्रिया,
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब।
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
Ultimate hearing solution. No obligation, complimentary hearing test.
HearMax Hearing Center, call Shiraz 416-792-8792.
Ringing, buzzing, hissing. Time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate hearing solution. 416-792-8792.
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
जी सामने नाजरीन, वेलकम बैक अगेन, एंड एक मुलाकात की तरफ लिए चलता हूँ आपको। मॉर्गेज की दुनिया में जनाब शिराज शफीक, अकाल मॉर्गेज से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। शिराज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम मजीद भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सुनाए ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज कुछ अपने मुतालिक एंड अपनी कंपनी के मुतालिक बता दें।
जी माजिद भाई, माजिद भाई हम लोग अकाल मॉर्गेज वाले पिछले 20-22 साल से मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, अकाल मॉर्गेज अपने नाम और काम दोनों की वजह से जानी जाती है। आपको किसी भी किस्म की मॉर्गेज चाहिए, चाहे आप कोई रेजिडेंशियल मॉर्गेज देख रहे हैं या कोई आप कमर्शियल मॉर्गेज देख रहे हैं, या किसी किस्म की आपको कोई फर्स्ट सेकेंड प्राइवेट मॉर्गेज चाहिए या लोन चाहिए या किसी किस्म का भी कोई हीलॉक चाहिए। इसके अलावा हम लोग पर्सनल लोन भी कर रहे हैं, और आपको कोई अप्लायंसेज के ऊपर लोन वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें जी, शहराज शफीक अकाल मॉर्गेज 416-502-8000
416-502-8000 शहराज का फोन नंबर है। शहराज आज जो हम बात करेंगे वो प्री कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने घर बुक करवाए हुए, चाहे वो कॉन्डोज हो या घर हो, उसके मुताबिक क्या बताएंगे आप यार?
जी माजिद भाई, माजिद भाई हमारे वो बहन भाई जिन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनकी क्लोजिंग्स वगैरह आ रही हैं, और उन बहन भाई ने कुछ ना कुछ पहले पैसे दिए हुए थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है जी कि जब उनकी क्लोजिंग आई है तो अब उनको ऑब्वियसली अब अप्रेजल की प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी मार्केट के अंदर। माजिद भाई जिन बहन भैया ने लेट्स सपोज के 2020 के अंदर या 21 में बुक करवाया था यूनिट, और वो यूनिट उन्होंने 5 लाख का बुक करवाया और आज उसकी वैल्यू बढ़ के होगी या 650 या 600,000, और उन्होंने 5% उस वक्त दिया था या 10% दिया था और बाकी पैसे उनको देने के लिए नहीं है उनके पास अभी, तो हमारे पास ऐसे लेंडर मौजूद हैं जो कि अप्रेज्ड वैल्यू के ऊपर अप टू 75% तक आपकी मॉर्गेज करके दे सकते हैं। देखिए अगर आपके पास पैसे मौजूद नहीं है और आप इस फिक्र में है कि जी आपका डिपॉजिट चला जाएगा, तो कॉल करें और अपनी ऑप्शन को जरूर डिस्कस करें, क्योंकि हमारे पास जो लेंडर मौजूद है वो आपकी अप्रेज्ड वैल्यू के ऊपर आपकी बहुत अच्छे रेट के ऊपर मॉर्गेज करके दे सकते हैं। इस तरह से माजिद भाई होता ये है कि जो क्लाइंट है, जो हमारे बहन भाई है, वो अपनी एक तो जो उन्होंने डिपॉजिट दिया वो भी वो अपना बचा लेते हैं और घर भी उनका उनको मिल जाता है। स्पेशली वो बहन भाई जिनके पास दो चार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है पहले ही हैं और अब वो फंसे हुए हैं, उनकी किसी और बैंक से मॉर्गेज भी नहीं हो रही और वो बस ये सोच रहे हैं जी कि अब हमारे पास डाउन पेमेंट भी नहीं है और हम लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे किसी ट्रेडिशनल बैंक के लिए, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये मौका है। वो अपने प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं, वो अपने पैसों को सेव कर सकते हैं और अपनी डील को क्लोज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप कॉल करें, अपना डिपॉजिट छोड़ने से पहले एक मतलब अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करें और अपनी ऑप्शन डिस्कस करके देखें कि आपके पास कौन कौन से सोल्यूशन मौजूद है। अगर आपके पास इनकम मौजूद है तो आपकी मॉर्गेज बी लेंडर से भी हो सकती है, अगर आपके पास इनकम नहीं है तो हम लोग प्राइवेट से भी आपको करवा के दे सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को सेव करें, अपने पैसों को बचाएं और जब प्रॉपर्टी क्लोज हो जाए तो उसके बाद फिर आप उसको अगर सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं, अगर आप उसको कीप कर सकते हैं तो उसको कीप करें। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लें जी, शहराज शफीक अकाल मॉर्गेज 416-502-8000-416-502-8000। और याद रखें एक बात कि अगर हम लोगों ने आपकी फाइल को रिव्यू करके आपको ओके कह दिया हम हमेशा अपने वादे पे पूरा करते हैं।
416-502-8000 शिराज शफीक का फोन नंबर है, अकाल मॉर्गेजेस से इनका ताल्लुक है और अगर कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग मॉर्गेजेस प्लीज गिव हिम अ कॉल, शिराज शफीक 416-502-8000। बहुत शुक्रिया सर आपका।
थैंक यू माजिद भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज।
जी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके साथ आरिफा मुजफ्फर प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में एक मुलाकात की तरफ लेकर के बढ़ूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमारे साथ होंगे जनाब शमशाद अहमद साहब जो कि रिटायर्ड एम्बेसडर हैं, फॉर्मर फॉरन सेक्रेटरी भी रहे हैं। एम्बेसडर शमशाद अहमद करियर डिप्लोमेट रहे हैं और 40 साल का आपका तजुर्बा रहा है अपनी इस पोस्ट के ऊपर जिसमें पाकिस्तान को बैरून ममालिक में आपने सर्व किया है। ही वॉज परमानेंट रिप्रजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क में आपने पाकिस्तान को रिप्रजेंट भी किया है। बेहतर इसके कि हम उनके साथ आपकी मुलाकात कराएं और वही सवालात जो हमारे जहन में हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक इस वक्त उनके बारे में बातचीत करें। दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं आज जिन टॉपिक्स पे, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इसराइल की गोलियों से पैलेस्टाइन की एक जर्नलिस्ट थी शीरी अबू आकला, उनकी असैसिनेशन हुई थी तो अमेरिका ने ये कहा था कि वो भी इसकी तहकीकात अपने तय करेंगे, मगर आज इसराइल ने जो बयान दिया है उन्होंने जो बेनी गांतस है उन्होंने कहा है कि इसराइली दिफाई फोर्सेस ने इस मामले पर पेशा वराना आज़ादाना तहकीकात की हैं और हमने जो नतायज है वो अमेरिका के साथ शेयर कर दिए हैं। अगला पैराग्राफ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि हम IDF के फौजियों के साथ खड़े हैं और किसी बैरूनी तहकीकात में मदद नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम बैरूनी किसी फोर्स को भी इस मामले में इंटरफेयर करने की या इसमें मदाखलत करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये तो थी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ से मुतालिक। सऊदी अरेबिया के हवाले से कि सऊदी अरेबिया ने विज़िट करना थी पाकिस्तान मगर उस विज़िट को जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने कैंसिल कर दिया है। आज यही कहा जा रहा है कि क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने अपनी G20 की समिट हो रही है, आपको जैसे मालूम ही है मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के बहुत करीब हैं, जनाब जो बाइडन से उनकी मुलाकात इस मौके पे नहीं होगी। अगली खबर जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के बारे में है कि अगले दो साल में हिंदुस्तान G20 समिट की मेहमान नवाजी हिंदुस्तान करेगा और अमेरिका ने बाकायदा इसके बारे में ये लफ्ज़ कहा है कि USA सपोर्ट्स हिंदुस्तान की G20 की प्रेजिडेंसी को, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो बाली में पहुंच गए हैं। यहाँ से एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जबकि G20 समिट में मुख्तलिफ ममालिक की आपस में मुलाकात हो रही थी इसी दौरान रशिया ने पे दर पे मिसल्स के साथ अटैक किए कईव के इलाके में जो कि यूक्रेन का दारुल खिलाफा है। उन्होंने कहा कि बहुत से मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया गया मगर फिर भी बहुत सा नुकसान भी पहुँचा है। یہاں سے ایک اور ایک جو سٹری میزائل تھا یعنی غلطی سے فائر ہوا یا جو کچھ بھی ہے, پولینڈ کی طرف اس کا رخ ہوا ہے. پولینڈ نے باقاعدہ میڈیا سے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ جب تک ہمارے پاس تفصیلات نہیں آ جاتی اس کے بارے میں بات چیت نہ کی جائے. نامعلوم دنیا کس سمت میں بڑھ رہی ہے. امریکہ اور چائنا کے درمیان پریزیڈنٹ شی سے ملاقات تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وار کے لحاظ سے ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں مگر جو کلائمیٹ ہے کلائمیٹ کے لحاظ سے امریکہ اور چائنا مل کے بات کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ چائنا نے اپنی فورسز کو الرٹ رہنے کا بھی کہہ دیا ہے. جی صاحب, پروگرام کا اسکیڈول چینج ہوا ہے, بالکل چینج ہوا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اینی ففتھ جنریشن وارفیئر. ہم زندگی میں آج تک کوئی معاملہ جنگ و جدل اور شہادتوں کے ساتھ حل نہیں ہوا, ہمیشہ ٹیبل ٹاک سے معاملات حل ہوتے ہیں. اور فار دا ٹیبل ٹاک وی گاٹ ٹو ہیو پیشنس. آپ کو لے کر کے چلتی ہوں پاکستان دو سپانسرز کے بعد, اور پاکستان سے میرے ساتھ ہوں گے شمشاد احمد صاحب. شمشاد احمد صاحب, ایز آئی سیڈ بیفور, امبیسڈر رہے ہیں. 40 سال کا آپ کا ڈپلومیٹک کیریئر ہے. اس کے علاوہ آپ نے یونائیٹڈ نیشنز کی میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور نیو یارک میں. دو سپانسرز ول کم بیک ود آر گیسٹ.
کہیں مارگیج نہیں مل رہی, جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گی آسان. 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام. ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں. ری فائنینسنگ آپشنز, رینیول آپشنز, مارگیج ڈیفیکلٹیز, ڈاؤن پیمنٹ ایشوز, سیلف امپلائڈ, پرائیویٹ فنڈز, سیکنڈ مارگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹوردی جیسمین پرمار سے. نمبر ٹو کال 647-923-5659, 647-923-5659, لائسنس نمبر 105-30.
Share more with family with CIBC Global Money Transfer. We know achieving your goals in Canada happened with the support of family. With CIBC Global Money Transfer, we have zero transfer fees. So more of your money goes to thanking those who matter most. Share more in over 120 countries. And now get up to $300 back on your first transfer with promo code GMTEVENT. It's our way to share too. For details, go to cibc.com/GMTEVENT. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply.
Spirit McKay Menswear. Three elements does represent the brand, fit, quality and value. Only South Asian owned men's custom suiting and shirting company in Canada. Fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compared to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss. 100% Italian wool suit starting from $2.99. 100% Egyptian cotton shirt starting from $29.99. Chinos, Mariano, wool sweaters, denim jeans, corduroy shirts, trousers and more. Visit today, 1535 Merseyside Drive, Unit 19. 20 Mississauga. Call 905-670-3388.
According to CREA, Canadian Real Estate Association, first time since February, prices went up in Canada. And nationally, I'm talking about a very small increase. 1.3% increase we had in October. Vancouver میں 6% increase تھی مگر Montreal میں 2.4% down. So altogether is 1.3% جو ہے اگر nationally دیکھا جائے. اور listing جو ہے was up 2.2%. اور اس کو اگر compare کریں from last year 2021 سے تو October of 2021 36% down ہوئی تھی sales. National prices jo hai $644,643 and which is down 9.9%.
بہت شکریہ ماجد جمال صاحب. اور ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں پاکستان. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب شمشاد احمد صاحب. ہمارے ساتھ ہوں گے
ٹائلنول ایڈول کی بات کر لیں عارف جی. ویری سون وی گونا ہیو, ابھی تو سارے پورے شیلفس میں ٹائلنول اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈویل اینڈ آلٹرنیٹیو برانڈ جو ہیں وہ سارے سارے خالی ہیں, اسپیشلی ان پلیس کینیڈا میں جہاں پر کہ پینڈیمک تو نہیں کہا گیا, ایپیڈیمک کہا گیا ہے انفلوئنزا کا. اور اسپیشلی 5 ایئرز اینڈ انڈر کے بچوں کے لیے بڑا مشکلات ہیں, ان کے لیے ٹائلنول اور یہ ایڈویل وغیرہ نہیں ہے. تو ہیلتھ کینیڈا نے کہا ہے کہ ہم یورپ کی کنٹریز سے منگوا رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ ویری سون ان نیکسٹ فیو ویکس یو گونا سی دوز ونس. ناٹ اونلی دیٹ, ملک پروڈکٹس بھی, اس کی بھی کمی ہو گئی ہے ساری جگہوں پہ.
एंड स्पेशली जो लोग इंश्योर वगैरह पीते हैं सब, देयर इज नो इंश्योर इन एनी स्टोर्स, तो यहाँ पर मुश्किल हो गया है यहाँ पर. टोरंटो पुलिस ने अरेस्टेड 3 पीपल फॉर डिफ्रॉडिंग 75-year-old वुमेन फॉर $1 million रेनोवेशन के लिए. मैं तीन नाम, चार नाम देता हूँ आपको कंपनीज के, अगर आपने भी उससे डील किया है तो आप भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं. ये तो अभी लेटेस्ट ये था, $1 million जो उन्होंने डिफ्रॉड किया एक खातून को. और इसके अलावा 2011 से लेकर 2022 तक 14 अदर विक्टम्स पुलिस के पास आए हैं. और ये कंपनीज के नाम हैं, अगर आपने कभी इनसे डील किया हो तो आप पुलिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट टू डू रेनोवेशन ये कंपनी का नाम है. इसके साथ साथ स्काला एक्सटीरियर्स, इसके साथ साथ इन टाइम्स फॉर फिनिशिंग टचेस, और AFS कॉन्ट्रैक्टिंग अपर लेवल रेनोवेशन, और एंटोनियो सिनोपोली 54, वेन माइकल 45 एंड फ्रांसिस सिनोपोली जो है 27, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. हमारे साथ शमशाद साहब हैं.
जनाब शमशाद साहब हमारे साथ आ गए. शमशाद अहमद साहब, जैसा आपसे कहा कि रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं. जी सर, अस्सलाम वालेकुम शमशाद भाई, कैसे हैं सर आप?
जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है.
थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत सारे सवाल जहन में हैं
और आप कर दूं फिर मैं. जी सर, ठीक है, तस्वीर ठीक आ रही है?
जी सर, अब मैं देख लेती हूँ आपको. जी सर, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. जनाब शमशाद अहमद साहब, जैसे आपसे मैंने कहा कि आपका जो करियर रहा है एज ए डिप्लोमेट रहा है, और आपने एज ए फॉरेन सेक्रेटरी भी खिदमत अंजाम दी हैं, और यकीनन इन तमाम ममालिक के लीडर से आप मिलेंगे. सर, मैं पाकिस्तान के हवाले से आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ. आपने पहली बात हम जो शुरू करते हैं वो पाकिस्तान के हवाले से करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी बहरान इस वक्त है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान, उनके बारे में कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं. आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं?
मैं इन बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा.
जी सर.
और ये झगड़ा है बुनियादी तौर पर सियासतदानों के दरमियान, और मेरे ख्याल में इस मसले को जमहूरी तरीकों से ही हल कर लेना चाहिए तो बेहतर होगा. और उसके लिए जाहिर है कि इमरान खान का जो रास्ता है वो जमहूरी है. वो एक तरह से अवामी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में उनके साथ एक ज्यादती हुई है कि उनकी एक सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको एक गैर कानूनी तरीके से उतार के उन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनके बारे में कौम को पिछले कई सालों से बताया जा रहा था कि उन्होंने बहुत करप्शन की है, मुल्क को लूटा है, टूट कर पैसा बाहर ले गए हैं. तो ये कुछ अजीब किस्म का तमाशा है. इस सिलसिले में मैं नहीं समझता कि मेरे पास कोई इसका हल मौजूद है. मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि हल जो है वो वही है कि जो जिस तरीके से उस गवर्नमेंट को, एक इमरान खान की गवर्नमेंट को नाजायज तरीके से उतारा गया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो एक नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो वोट खरीदे गए थे. लोटाक्रेसी हुई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, असेंबली के मेंबरों को खरीद कर तो वो किया गया, बहुत गैर जमहूरी तरीके से वो चेंज आई थी. तो अब ये जो कहते हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो जो भी करना है तो करें, जो जल्दी ये मुल्क इस क्राइसिस का ज्यादा देर मुतहमल नहीं हो सकता मेरे ख्याल में.
बहुत शुक्रिया सर. पंजाब के हवाले से हमने देखा, हमने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखा. आज मैं बल्कि देख रही थी कि सिंध में जो PTI के अरकान हैं वो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात भी की है, और कहा गया है कि सिंध में PTI के मेंबरान को हरासा किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, और हर तरह, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गुफ्तगू में जिक्र भी किया. फरमाएंगे इसके बारे में कुछ कि क्या हो रहा है, कि कोई छोटे बड़े की का फ़र्क ही नहीं रहा.
دیکھیں یہ جو سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہے اور نہ ہمارے ادارے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، نہ انصاف ہو رہا ہے قانون کے مطابق، نہ آئین کو آبزرو کیا جا رہا ہے، اور شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں اس قسم کی تماشا سرکس چل رہا ہے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے 70 سال سے اسی قسم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، متواتر ہم لوگ جس کو جمہوریت کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں جمہوریت کہیں اصلی صورت میں آئی ہے، اور یہ جمہوریت کا تماشا ہے۔ اور دیکھا جائے تو آج کل تو جمہوریت جن ملکوں میں پیدا ہوئی تھی، جہاں برطانیہ میں 1000 سال کے بعد وہاں جمہوریت پیدا ہوئی پارلیمانی طرز حکومت، یا امریکہ میں 200 سال کی جد و جہد کے بعد ایک جمہوری سسٹم ہوا، آج کل تو دیکھا جائے وہاں بھی اس قسم کی تماشے ہی چل رہے ہیں، وہاں بھی جمہوریت کا تماشا ہے، سرکس چلتا ہے۔ تو بدقسمتی یہی ہے کہ یہ جو کہنا کہ جمہوری طرز حکومت جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے بڑا موضوع ہے، یہ غلط نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جتنی ترقی پذیر دنیا ہے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں میجورٹی، 190 کی اگر عالمی برادری ہے، 190 ممالک کی، تو آپ دیکھ لیجیے اس میں کم از کم 150 ممالک ایسے ہیں افریقہ میں یا لیٹن امریکہ میں یا ایشیا میں جو ترقی پذیر ہیں، اور وہاں کسی میں بھی جمہوریت نہیں ہے، بھارت سمیت کوئی جمہوریت نہیں ہے، بھارت میں بھی تماشا ہے، گنڈا گردی ہے، جتنے کرمنلز لوگ ہیں وہ سیاست جو سیاسی کارڈرز ہیں وہ کرمنلز کا ہے، سارے جرائم پیشہ جتنے لوگ ہیں وہ سیاست میں آ جاتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی یہ اس طریقے سے معاملات حل ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا، ہر ملک کو اپنا ایک اپنے مزاج کے مطابق سسٹم اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور ہمارا جو ہے مزاج قوم کا وہ پارلیمانی طرز حکومت نہیں ہے، ہم مزاجن خلافتوں کی امت رہے ہیں اور آٹوکریٹک ریجیمز کا حصہ رہے ہیں، تو بہتر ہوگا ہم ایسا سسٹم اپنا لیں جس میں باقاعدہ کوئی اچھی شہرت کا آدمی، اچھی انٹیگریٹی کا آدمی وہ حکومت سنبھال لے، اور پہلے سب سے پہلے تو ملک کا سسٹم ٹھیک کرے، کیونکہ ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ نہ جمہوری ہے اور نہ سولائز سسٹم ہے، کرپشن پر مبنی ہے، ہر چیز کرپشن پر ہے، سیاستدان، بیوروکریسی، پولیس، یعنی یہاں وہ چیزیں جو ادارے ہیں وہ دنیا کی طرح کام نہیں کر رہے، یہاں پر نہ پولیس کا کام کرتی ہے، نہ بیوروکریسی کا کام کرتی ہے، جو عدالتیں ہیں وہ انصاف بالکل لابلد ہیں، اور پارلیمنٹ تو ہے ہی ان پڑھ لوگوں کا ایک ادارہ ہے جن کے اوپر کوئی قید ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور نہ ان کو پتہ ہے کہ قانون سازی کیا ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں یہ سب مذاق بنا ہوا ہے۔ تو بہت ضرورت آ گئی ہے، آج ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں جو ہمارا ایک ملک کی آخری بیسٹ امید تھی، جو ملک کی سلامتی اور سالمیت کی، فوج ہمیشہ سے آخری امید سمجھی جاتی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ سے ملک کو سہارا بھی دیا، کیونکہ فوج کے بغیر ہمارا ملک 70 سال کیا 7 سال بھی زندہ نہ رہتا، آزاد نہ رہتا، تو ان کی وجہ سے ملک 70 سال تو چل گیا ہے، اور پہلے بھی انٹروینشن جو فوج کرتی تھی وہ صرف اس وجہ سے کرتی تھی جب سیاستدان جو ہیں وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے، انکمپیٹنس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، جب وہ ڈلیور نہیں کر پاتے تھے اور ایک خلا پیدا ہو جاتا تھا، تو پھر فوج اس خلا کو پورا کرنے کے لیے انٹروین کرتی تھی، اور پھر کچھ سال سٹیبلائز ملک کو کر کے پھر ان کے حوالے کر دیتی تھی اس امید پر کہ شاید سیاستدان اب سبق سیکھ جائیں۔ اور یہ حال مشرف کے جانے کے بعد یہی سچویشن پیدا ہوئی تھی، اور ہم سب کی توقع تھی کہ اب جمہوریت شاید یہاں پہ پنپ جائے اس ملک میں، لیکن وہ جمہوریت آئی نہیں، بلکہ بدستور سیاستدان جو تھے فوج کو پرووک کرتے رہے کہ کسی طریقے سے فوج آئے اور ٹیک اوور کر لے، لیکن فوج نے فیصلہ یہی کیا ہوا تھا کہ ٹیک اوور نہیں کرنا، اور بدقسمتی صرف یہ ہے کہ اس دفعہ وہ خلا پور کرنے کی بجائے اس خلا میں فوج پھر ان بدماشوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو واپس لا کر انہوں نے ملک پر مسلط کر دیا ہے، اور خود بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے، میری نظر میں یہ 1971 سے بھی زیادہ بڑی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اس وقت بھی یہی تھا, فوج اور سیاستدان اکٹھے مل کر انہوں نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا, ایک اکثریت پہ فیصلہ جو انتخابات میں ہوا تھا اس فیصلے کو پر عمل دائری نہیں ہوئی تھی, اور پھر بھٹو کے کہنے پر جنرل یحییٰ خان جیسا بے وقوف جرنیل تھا جس نے مل کر ایک ایسا سانحے سے دو چار ملک کر دیا جس کا ہندوستان نے فائدہ اٹھا کر ملک کو دو لخت کر دیا, اور آج اسی طریقے سے فوج کی مداخلت کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ فوج کا جو اپنا امیج ہے وہ شیٹر ہو گیا ہے, ارپیریبلی شیٹر ہو گیا ہے. تو میری تو خواہش ہے کہ کاش ایسی بات نہ ہوتی, کیونکہ ہم نے بڑا فوج کو ہمیشہ اپنی آنکھوں پر کتارا سمجھا ہوا ہے, اور فوج کے بغیر یہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا, اور اب تو ایسا ہے کہ فوج بھی بے بس ہے, مجبور ہے, اور اس کا واحد حل یہی تھا کہ جلدی اگر ہمارے فوج کے جو سرکردہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, ایک کرائسس جن کی وجہ سے پیدا ہوا, کہ اگر وہ اپنی غلطی کا احساس سمجھتے ہیں تو بہتر یہی ہوتا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو انڈو کیا جائے, اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی تھا کہ عوام کو ایک مینڈیٹ کا موقع دیا جائے کہ وہ انتخابات, فوری انتخابات کروا کر وہ کیا جائے. تو اب یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ان سیاستدانوں کے اس طبقے کو ایک پریروگیٹو دینا کہ وہ فیصلہ کریں گے کب انتخابات ہوں گے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے, اور بہتر یہی ہے کہ فوری انتخابات کروائے جائیں, عوام کو موقع دیا جائے, وہ جس کو بھی منتخب کرنا چاہیں وہ کریں, اور فوج جس طرح اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اب 70 سالوں کی جو تاریخ ہے اس کے برعکس وہ آئندہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, میرے خیال میں سب سے اچھا انتظام وہی ہوگا کہ فوج اپنا کام قانون کے مطابق, آئین کے مطابق اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں سنبھالے, ملک کے جو بارڈرز ہیں ان کی حفاظت کرے, اور ملک کی سلامتی اور سالمیت کی ذمہ داری لے, باقی سیاست اور حکمرانیت یہ منتخب لوگوں تک چھوڑ دیا جائے, وہ سسٹم بنائے اپنا, چاہے صدارتی سسٹم ہو, پارلیمانی سسٹم ہو, جو کوئی بھی ہو وہ عوام کی مرضی کے ساتھ ڈیولپ کیا جائے, اور دا سونر دا بیٹر, یہ چیز ہے. تو اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت. میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ کس نے کیا کہا, کیا نہیں کہا, کیا جرم ہو رہا ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, حالات اور بگڑتے جا رہے ہیں. یہ ملک جلدی اگر اس کا علاج نہ کیا گیا, یہ ملک ایک بھیانک سٹیج پر پہنچ کر میرے خیال میں مشرقی پاکستان سے زیادہ کی ٹریجڈی پہ چلا جائے گا, اس کو جلدی سے سنبھالنا ہوگا, بس یہ ہے.
بہت شکریہ سر. مگر آج میں پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمشنرز کو ہینڈلرز بھی کنٹرول کرتے ہیں, جس میں انہوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی کہ الیکشن کمشنر ہمیں ٹارگیٹ کر رہا ہے کیونکہ اس نے ہمارے خلاف 8 بار فیصلہ دیا اور عدالت نے 8 بار اس فیصلے کو مسترد, یعنی الیکشن کمشنر کے فیصلے کو مسترد کیا. انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, نون کے فنڈز, ان کے کیسز کو بھی دیکھا جائے. ہم نے اپیل بھی کی ہے مگر الیکشن کمشنر اس پہ کان نہیں دھر رہا. تو
یہ ایک بات تو ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام ہونا چاہیے یا اس کے مطابق انتخابات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ایک آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کی تشکیل دی گئی ہے, اگرچہ میں ہمیشہ سے اس سسٹم کو غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ دو بڑی پارٹیوں نے آپس میں سمجھوتا کر کے اپنی مرضی سے اپنی پسند کے لوگوں کو الیکشن کمیشن میں اپوائنٹ کر دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہوتی, ان کی انٹیگریٹی کا کسی کو یقین نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی نے پہلے دن سے ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں, تو بہتر تو یہ تھا کہ جب ان کے جس کے خلاف ایک عدالت پہ بھی یہ ہوتا ہے, کسی جج کے بارے میں اگر کوئی ایک شبہ ظاہر کر دے کہ ہمیں اس کی غیر جانبداری پر بھروسہ نہیں ہے, تو وہ عام طور پر پاسے ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن جس کے بارے میں بہت واضح طور پر ثبوت دیے جا چکے ہیں, اس بارے میں میرے خیال میں ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اب مزید الیکشن کروانے کی ان کو پریروگیٹو ملنا چاہیے. اس پہ ضروری جو بھی ہمارے پاس راستہ ہو سکتا ہے تبدیلی کا وہ ہونا چاہیے. جہاں تک یہ بات کہ فورن فنڈنگ کی بات ہے, دیکھیں لوگ بے وقوف نہیں ہیں, یہ جو فورن فنڈنگ پارٹیوں کی ہے ٹھیک ہے, قانون ہیں, لیکن یہ تو سوچئے कि जो एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पर फॉरेन फंडिंग के केसेस बनाकर जो किया जाता है ये मजाक है सारा इस सिस्टम का। वरना देखा जाए जो फॉरेन फंडिंग है ये तो मुल्क भी फॉरेन फंडिंग पर चल रहा है। हर हुकूमत आती है तो आईएमएफ से पैसा लेती है और वो जितना आईएमएफ के कर्जे मिलते हैं वो सब कंडीशनलिटी से भरपूर होते हैं। उनमें हमारी आजादी भी चली जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्शन चला जाता है, सॉवरेंटी को नुकसान पहुंचता है। तो फॉरेन फंडिंग तो सबसे बड़ा नुकसान तो उन कर्जों से हो रहा है जो मुल्क बदस्तूर लेता है अपनी सर्वाइवल के लिए। तो बजाय इसके कि पार्टियों की जो फॉरेन फंडिंग है उसके बारे में सवाल उठाया जाए, पहले कर्जे बंद लेना बंद करें ताकि मुल्क के अपने वसायल हैं उनको इस्तेमाल करें, अपनी टांगों पर खड़े हों, अपनी इज्जत को रिस्टोर करें, अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करें, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन को रीगेन करें। ये चीजें हैं जरूरी। ये नहीं है कि आप विक्टिमाइजेशन शुरू करें अपने मुखालिफिन, आप किसी एक पार्टी के साथ मिलकर एक किसी एक लीडर के खिलाफ फैसले करना, ये तो मजाक है, सारे सिस्टम का मजाक है। ये जिस तरह अदालतें गलत फैसले दे सकती हैं उसी तरह ये सब कुछ हो रहा है। इसको खत्म करना होगा, वरना तो हम इस किसी भी इस किस्म के जो प्रोसेस के मुतम्मल नहीं हो सकते।
सर आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्या बात है, इतनी बड़ी बात आज आपने कही कि फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं तो मुल्क तो ज़ाती तौर पे फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। सर इमरान खान साहब की कमेंट को जब चेंज किया गया था तो ये कहा गया था महंगाई है विच इज़ अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम और तरक्की नहीं कर रहा, वेयर एज आज प्राइम मिनिस्टर ने कंपेयर किया, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो हदफ था वो 4% हमने रखा था मईशत की तरक्की का, वेयर एज 4 की बजाय हम 6% हमने अचीव किया, हालांकि कोविड का दौर था, दुनिया ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। वेयर एज इस वक्त की गवर्नमेंट और ये लोग क्यों रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान का ग्राफ मईशत के लिहाज से ऊपर जा रहा था।
देखिए ये जो मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत को जिस तरीके से निकाला गया है वो बिल्कुल गलत था, मैं और ये अक्सरियत आवाम की यही राय है। और उसकी वजह यह है कि पिछले जो प्राइम मिनिस्टर जिनको निकाला गया है उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ बेस्ड सिस्टम का था रास्ता था। और इस किस्म के रास्ते को इख्तियार करने के बाद कोई ये जादू की छड़ी नहीं होती कि ओवरनाइट नताइज निकल आते हैं। ये नहीं था कि 3 सालों में 4 सालों में सारे मुल्क के मसाइल खत्म हो जाएंगे। आप मिसालें ले लीजिए ऐसे ममालिक की जो दूसरी जंग अजीम में हमसे भी ज्यादा तबाही का शिकार हो गए थे और वहां भी उन लोगों ने इसी तरीके से नया सिस्टम और नई हुकूमत हुक्मरानियत ला के, लेकिन कहीं भी जमहूरियत नहीं थी वहां। आप देख लीजिए कि दूसरी जंग अजीम और या कोरिया की जंग अजीम के बाद जो रियासतें बिल्कुल तबाह हो चुकी थी वहां उन लोगों के पास खाने के लिए दरख्तों के छिलकों के अलावा उसको उबाल के खाते थे, कुछ भी नहीं रह गया था। लेकिन उन्होंने 15-20-25 सालों में अपने मुल्कों को ट्रांसफॉर्मेशन की है इस कदर के आज वो दुनिया में इकोनॉमिक जायंट्स बन गए हैं। उसमें मिसाल ले लीजिए आप जापान जो दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गया था, एटम बम से तबाह कर दिया गया था, उसी तरीके से चीन देख लीजिए जो पूरी तरह जंग में और अपनी जो वॉर थी लिबरेशन की जंग थी उसके बाद आप 20-25 सालों में उन्होंने किस तरीके से अपने आप को ये किया कि आज दुनिया की एक सबसे बड़ी मईशत बन गए हैं और ताकत बन गए हैं। उसके अलावा देख लीजिए कोरिया देख लीजिए, वो 25-30 सालों में एक डिक्टेटर था पाक चोंगी, उसने आकर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दी कि वो भी एक आलमी जॉइंट बन गया, इकोनॉमिक जॉइंट। मलेशिया सिंगापुर देख लीजिए, तो उन लोगों से सबक सीखिए। तो जब आप एक आगाज शुरू करते हैं किसी भी नई हुक्मरानियत का नए सिस्टम का तो उसमें 20-25 साल लग जाते हैं। तो ये एक हमाकत थी किसी के पार्ट पर भी जो ये कहता था कि इमरान खान ने अभी तक 3 सालों में कोई तब्दीली नहीं नजर आई। मैं समझता हूं जितनी तब्दीली इन 3 सालों में आई है 75 सालों में नहीं आई, क्योंकि उन 3 सालों में कम अज कम कौम इतनी अवेयर हो गई है। आज कौम को यह पता चल गया है कि ये हमें किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है। हुक्मरानों ने अपनी लूट मार करने की खातर न सिर्फ ये कि मुल्क को जिस तरह वल्चर्स हड्डियों को नोचते हैं उस तरह किया है, बल्कि अवाम का सारा पैसा यहां से छीन कर लूट कर बाहर ले गए हैं। तो अब अवाम में ये जो बेदारी आ चुकी है ये बजाते खुद एक तब्दीली है। और अब अवाम को ये एक ऐसा जिन है जो बोतल से बाहर आ गया है, अब इस जिन को बोतल के अंदर नहीं डाला जा सकता। ये मैं बता देता हूं, इलेक्शन आज हो, कल हो, एक साल बाद हो, ये इलेक्शंस का नतीजा अब अवाम जो है वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करने में खुद मुख्तार होंगे और वो ठीक फैसला करेंगे। तो इस वजह से ये जो अब तब्दीली आ चुकी है वो तीन साढ़े तीन साल के दौर में, वो तब्दीली इस कौम की एक किस्मत बदल देगी। और आज ये है कि करप्शन के नाम से हर एक को नफरत है और कोई शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये करप्ट टोला फिर आकर उनके ऊपर बैठे। इसी वजह से अब तक इस हुकूमत को लोग नहीं मानने के लिए तैयार, वो यही कहते हैं कि इंपोर्टेड है, इलीगल हुकूमत है, और ये चलता रहेगा। ये कोई इस किस्म से कोई फायदा नहीं मुल्क को होगा, मुल्क बदस्तूर और तबाही की तरफ जाएगा अगर फौरी तौर पर हमने अपने आप को रिवर्स न किया इस क्राइसिस से।
बहुत शुक्रिया सर। मैं सर इमरान खान साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया है इस न्यूज़पेपर को, जिसमें बड़ी वाजे तौर पे समझ आता है, उन्होंने ये कहा है कि साइफर का मामला मेरे पीछे रह गया और हम हमेशा से अमेरिका और रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर उनके अल्फाज को तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, हालांकि वो अंग्रेजी बड़ी सिंपल अंग्रेजी है। क्या फरमाएंगे इसके बारे में आप?
अरफा देखिए, ये जो तोड़ने और मरोड़ने का रवैया है ये हमारी आदत है, हमारे बतौर सोसाइटी के देखा जाए, सोशल मीडिया में देख लीजिए जिस तरीके से हकायक को डिस्टॉर्ट किया जाता है, झूठ बोला जाता है, मकर और फ्रेब से भरी होती है हर चीज। तो ये एक लानत है जो हमारी कौम के अंदर है और इसी वजह से शायद हम ये सारे मसाइल बदस्तूर सफर कर रहे हैं। लोग कहा करते हैं कि जी अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, मैं कहा करता हूं कि अल्लाह ताला के फरिश्तों के पास कतई वक्त नहीं है कि वो हमें मदद के लिए आए, क्योंकि वो इतना मसरूफ हैं अमेरिका या कनाडा या यूरोप की सोसाइटीज में जहां एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, कानून है, जहां लोग अपनी मदद खुद करते हैं, तो वो सारे फरिश्ते इस वक्त वहां मसरूफ हैं। तो अल्लाह ताला के फरिश्तों के पास हमारे लिए कोई वक्त नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम जल्द से जल्द जो हमारे लिए रास्ते अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हुए हैं, और हर चीज हमारे कुरान में है, हर चीज हमारे मजहब में है। बदकिस्मती ये है कि हमने अपने ही जो वैल्यूज हैं उनको फरामोश कर दिया है, उनको भूल गए हैं, जिस वजह से हम सब मुसीबतों में पड़े हुए हैं। अब जो ये इमरान खान की बात कर रही हैं, तो मैं आपको अपना एक ये बता दूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मुझे मौका मिला था, एक रिजीम चेंज पे सेमिनार किया गया था इस्लामाबाद में, जो वहां की बार कौंसिल ने किया था इस्लामाबाद की, और मुझे इन्वाइट किया गया था, तो मैंने वहां पर एक तकरीर की थी और उसमें इमरान खान भी मौजूद थे। तो मैंने जो बात की है इस हवाले से, जो कॉन्स्पिरेसी की बात जब की जाती थी अमेरिका ने के कॉन्स्पिरेसी से इमरान खान को उतारा है, तो मेरा रवैया जरा इससे, मेरा जो पोजीशन है वो बिल्कुल फर्क है। मैंने उस वक्त भी कहा था, इमरान खान सामने बैठे थे, मैंने कहा था कि कॉन्स्पिरेसी की बात आप अमेरिका के बारे में मत करें, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, बड़ी ताकत है दुनिया में, उसके साथ झगड़ा कोई भी नहीं करना चाहता, हत्ता के ना चीन ना रूस, वो भी बचते हैं कि कोई किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन ना हो। और कॉन्स्पिरेसी इस वजह से मैं नहीं समझता कि अमेरिका ने की है, क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेसी करनी होती तो वो आपके सफीर को असद मजीद को बुलाकर सामने बैठकर ये ना कहते कि हमें इमरान खान पसंद नहीं है। तो उन्होंने तो अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश बता दी और अपना एक उनका डॉक्ट्रिन है रिजीम चेंज का कि जहां जहां भी हुकूमतें हैं जिनको वो पसंद नहीं करते तो वो साफ बता देते हैं कि ये हुकूमत हमें पसंद नहीं है। तो वो जो बाकी साजिश हुई है वो साजिश हमारे मुल्क के अंदर हुई है, क्योंकि हमारी रिवायत है हमेशा से तारीखी तौर पर, यानी सैकड़ों सालों से, कि हम आने वाले हमलावर जो होते थे और साजिश करने के लिए दरवाजा अंदर से हमेशा हम खोलते थे। जितने भी सेंट्रल एशिया से इन्वेजन हुए तो अंदर से हम लोग उनको खुशामदीद कहते थे। इसी तरह जब सिखों ने लाहौर पर कब्जा किया था तो वो भी लाहौर के अंदरून शहर से जो लोग थे उन्होंने सिखों को ये कहा था कि हम रात को सारे शहर के दरवाजे खोल देंगे और तुम आ जाना, कब्जा कर लेना। उस वक्त अफगान गवर्नर होता था, उसके खिलाफ इन्होंने बगावत की मुसलमानों ने और इस तरीके से सिखों ने आकर कब्जा हासिल किया और फिर वो एम्परर बन गया, लाहौर पे कब्जा किया, पंजाब का एम्परर बना, फिर अफगानिस्तान चला गया, हमला किया कश्मीर पे। तो ये चीजें हमारी तारीख का हिस्सा है कि साजिशें यहां हम करने के बहुत माहर हैं, जिसको बाइजेंटाइन इंट्रीग्स कहते हैं ना, जो ग्रीक और रोमन तारीख की इंट्रीग्स का जब जिक्र होता है, हम उससे भी बदतर इंट्रीग्स करने के आदी हैं। आप अपनी तारीख पर नजर डाल लीजिए, जब लियाकत अली खान थे तो वो जाना नहीं चाहते थे रूस, बल्कि हम लोग अमेरिका जाना चाहते थे, मगर अमेरिका इंडिया को प्रेफरेंस दे रहा था 1949 में। अमेरिका ने दावत नेहरू को दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं दी। तो फिर हमारे सिफारतकारों ने एक ड्रामा रचाया कि जब लियाकत अली खान लंदन जा रहे थे तो तेहरान रुके, तो वहां राजा गजनफर अली खान सफीर थे, उनके घर पर रात को खाना हुआ, तो हमने जो सोवियत यूनियन का वहां तेहरान में एम्बेसडर था वो मुसलमान था अजरबैजान का, तो वो भी मधु था, तो उसको हमने कहा कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को तुम मॉस्को बुलवाओ। तो एक हफ्ते के बाद स्टालिन ने हमें एक दावतनामा भिजवा दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि आप मॉस्को आए। अब ये बड़ी हमारी सिफारतकारी की कामयाबी थी, और फिर जब वो हमें दावतनामा मिला तो हमने वो इस तरह जिस तरह इमरान खान ने ये जो साइफर लहराया था ना पब्लिक मीटिंग में, तो हमने वो लहरा दिया था कि हमें ये देखें स्टालिन का इनविटेशन मिल गया है, और मकसद उसका ये था, हमने अमेरिका को बताना था कि देखो तुमने हमें इनवाइट नहीं किया तो ये हमें दावतनामा मिल गया। हमने वो लहराया, अगले दिन ही प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने लियाकत को दावतनामा भेज दिया, और फिर हमने वो जो स्टालिन का दावतनामा एक तरफ रख दिया और ट्रूमैन की दावतनामे पर लियाकत अली खान अमेरिका पहुंच गए। वहां पहुंचे, अच्छी बातचीत हुई, दो हफ्ते का टूर था तो बड़े अच्छे मुजाकरात हुए, लेकिन आखिरी दिन पे ट्रूमैन ने लियाकत अली से कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपनी फौज कोरिया हमारी मदद के लिए भेजो। तो लियाकत अली ने वहां एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया, क्योंकि वो उसने कहा कि मेरे कायद की पॉलिसी ये है कि पीस विद इन पीस विदाउट, हर एक के साथ हम जंग किसी के साथ नहीं करते, हम अमन चाहते हैं। तो वो इनकार करके वापस आ गए। तो हमारे यहां जो वो तबका जो इंपीरियल कनेक्शंस वाला जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, वो इतने मायूस हो गए कि अमेरिका से हमें झाड़ पड़ गई है और अमेरिका को हमने नाराज कर दिया है। तो बहरहाल फॉरेन ऑफिस ने लियाकत अली को कहा कि आप बेहतर होगा कि आप मॉस्को जाएं। तो मॉस्को दो हफ्तों बाद जाना था, लेकिन वो दो हफ्तों के अंदर अंदर लियाकत अली का कत्ल हो जाता है। तो ये देखिए, अमेरिका ने नहीं मरवाया लियाकत अली खान को, वो हमारे यहां साजिश हुई है, उसको मारा गया है। तो ये एक वाकया है, इसी तरह भुट्टो का वाकया इसी तरह हुआ, हमारे अंदर से मारा गया, अगरचे झगड़ा अमेरिका के साथ था न्यूक्लियर पे, लेकिन मारने वाले हम खुद थे, हमारे यहां सिस्टम जो ऐसा है कि वो उन्होंने फिर भुट्टो को मार दिया। फिर जियाउल हक ने अफगानिस्तान की जंग बड़े कमिटमेंट के साथ अमेरिका को के साथ मिलकर लड़ी और अफगानिस्तान को आजाद करवाया, लेकिन अभी चूंकि वहां अफगानिस्तान में जो हमारी मर्जी के मुताबिक के वहां एक सिस्टम बन जाता वो नहीं हुआ, और अमेरिका ने कहा कि हम तो छोड़ रहे हैं जा रहे हैं, तो इससे जियाउल हक और रेगन में इख्तलाफ पैदा हुआ। तो लोगों में हमारे ये तासर पैदा हो गया कि हमने अमेरिका को नाराज कर दिया है, और अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जियाउल हक को हमने मार छोड़ा, उसका जहाज जो था वो फिर हादसे में चला गया। तो इस तरह हर वाकया, इसी तरह बेनजीर भुट्टो का देख लीजिए, उसको अमेरिका चाहता था कि वो वापस आ जाए, मुशर्रफ के कंधों पर उसको रखकर हुकूमत करे, ताकि मुशर्रफ हुकूमत करे और बेनजीर का हंसता खेलता चेहरा उसके कंधों पर रहे, लेकिन यहां आकर बेनजीर अपने वादे से मुकर गई, जो वादा अमेरिका को कह के गई थी। तो वो फिर मरवाना था, तो वो अमेरिका ने तो नहीं मरवाया, लेकिन देख लीजिए अंदर से उसको मरवा दिया गया। तो हमारे यहां बदकिस्मती ये है कि सिर्फ अमेरिका की ख्वाहिश पता होनी चाहिए, अमेरिका इतना बड़ा हमारा माई बाप है हमारे इन लोगों का, सियासतदानों का, कि वो जो ख्वाहिश होती है वो बगैर कुछ कहे पूरा हो जाता है। और अब ये इमरान खान से अमेरिका नाराज था, क्योंकि इमरान खान कहता था कि अब मैंने कोई जंग नहीं लड़नी, कोई और वजह नहीं थी, हालांकि देखा जाए प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इमरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और उन 19-18 महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, सिर्फ बाइडेन के आने के बाद प्रॉब्लम्स हुए। और ये भी एक तारीख है कि जब भी डेमोक्रेट्स अमेरिका में आए हैं तो हमारे यहाँ जो जमहूरी हुकूमत होती है उनके इख्तलाफात हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका हमेशा से हमारे यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप को पसंद करता है, उनके साथ लैंग्वेज समझता है उनकी फौजियों की, तो वो जब भी फिर हमारे यहाँ मुंतखब लोग आते हैं तो अमरीका के साथ मसला हो जाता है। तो बाइडन का मसला इमरान के साथ इसी वजह से हुआ, क्योंकि इमरान ने कह दिया था कि मैंने अब तालिबान के साथ सुलह करवा दी है आपकी और आप छोड़ के चले गए हैं, बेहतर ये है कि आप लोग रिकंस्ट्रक्शन करें अफगानिस्तान की और अब हमसे मजीद जंग नहीं लड़ी जाएगी, अब हम मजीद हमला अफगानिस्तान पर नहीं करने की अपने जरिए से दे सकते। तो इस बात पर अगर बाइडन को नाराजगी थी